सबसे पहले छह सुर्खियां। हैकर्स ने मैरी बैंक का चोरी शुदा डेटा डार्क वेब पर जारी करना शुरू कर दिया। चीन की जानिब से साबिक ऑस्ट्रेलवी फौजियों की भर्ती ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स मामले की जांच करेगी। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर दिफा रिचर्ड मर्लीस ने ऑस्ट्रेलवी दिफाई फोर्स को उन रिपोर्ट्स का जायजा लेने का हुक्म दिया है जिनमें कहा गया है कि साबिक ऑस्ट्रेलवी फौजियों से चीन ने राबता किया है ताकि उसकी फौजी तरबियत फराहम की जाए। मिस्टर मर्लीस का कहना है कि उन्हें मुल्क के राजों को मुतासर करने वाले दावों के बारे में खदशात हैं और दिफाई पॉलिसियों और तरीक़ेकार का गहराई से जायजा लेने की जरूरत है। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि साबिक एहलकारों की जिम्मेदारी है कि वो कॉमनवेल्थ हुकाम के लिए रियासती राजों को बरकरार रखें।
For those who do come into possession of our nation's secrets, either through service in the Australian Defence Force or indeed service in any other part of the Commonwealth, there is an enduring obligation to maintain those secrets for as long as they are secrets, which persists well after their engagement with the Commonwealth, and to breach that obligation is a very serious crime.
एक रैंसमवेयर ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से चोरीशुदा क्लाइंट डेटा डार्क वेब पर पोस्ट करना शुरू कर दिया है। ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले ब्लॉग पर सैकड़ों नाम, पते, तारीख पैदाइश और मेडिकेयर की तफसीलात पोस्ट की जा रही हैं। हैकर्स ने मैरी बैंक को डेटा जारी ना करने के एवज तावान का मुतालबा किया था, लेकिन मैरी बैंक ने इस हफ्ते के आगाज में कहा था कि वो तावान अदा नहीं करेगा क्योंकि इससे मजीद जराइम की हौसला अफजाई होगी। नेस्ट शब के बाद हैकर्स ग्रुप ने पहली फहरिस्तें जारी कर दी। दूसरी जानब एक लॉ फर्म ने मैरी बैंक के सारिफिन को इदारे के खिलाफ तबकाती कार्रवाई के मुकदमे में अपनी दिलचस्पी के इंदराज का कहा है। चैनल 7 से गुफ्तगू करते हुए जॉर्ज न्यू हाउस का कहना था कि जिन अफराद का डेटा चोरी हुआ है उन्हें हर्जाना मिलना चाहिए।
Companies need to be held accountable for their actions. We hand over very personal information to companies and governments, and they need to take that carefully. If there's no bite when data is released, then this will continue. The government's talking about fines, massive fines, but how does that help the individual? They need to change their passports, bank accounts, all sorts of things, and they don't get compensated.
उधर लेबर्स के इंतखाबी वादों में कहा गया है कि नर्सिंग और मिडवाइफरी के ग्रेजुएट्स को विक्टोरिया के सरकारी अस्पतालों के निजाम में 2 साल तक काम करने का उहद करने पर 5,000 का साइन ऑन बोनस मिलेगा। इसका मकसद नर्स और मरीजों के तनासुब को कंट्रोल करना भी है। रियासत के प्रीमियर डैनियल एंजोज ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फेडरेशन के दफ्तर में यह ऐलान करते हुए अपनी हुकूमत दोबारा मुंतखब होने की सूरत में $150 मिलियन के हेल्थ पैकेज की यकीन दहानी कराई, जिसका मकसद नर्स और मरीज के तनासुब को कंट्रोल करना है। जनाब एनजीओस का दावा है कि ग्रेजुएट नर्सों और दाइयों को साल 2022 से 24 के दरमियान सेहत आमा के निजाम में दाखिल होने पर $2,500 का बोनस दिया जाएगा और 2 साल की मुलाजमत के बाद मजीद $2,500 अदा किए जाएंगे।
Graduating nurses and midwives who enter the public hospital system, graduating in 22, graduating in 23, graduating in 24, they will each receive a $5,000 sign-on bonus if they commit to the public hospital system for 2 years.
वफाकी जराइम के लिए जुर्माने की रकम आइंदा साल से बढ़ाई जाएगी। वफाकी पार्लियामान में मुतारफ कराए गए नए कवानीन से पता चलता है कि 1 जनवरी 2023 से जुर्माने के यूनिट की बुनियाद 222 से बढ़ाकर 275 कर दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल मार्क ड्रेफ्ट ने दावा किया है कि ये इजाफा ज्यादा से ज्यादा जुर्माने का तायुन करेगा जो दौलत मुश्तरका के जराइम पर आयद किए जा सकते हैं। जुर्माने की रकम में इजाफे की तजवीज़ गुज़िश्ता माह के वफाकी बजट का हिस्सा थी और तवक्का है कि अगले 4 सालों में बजट के निचले हिस्से के लिए $31.6 मिलियन जमा कर लिए जाएंगे। और अब कुछ खबरें आलमी उफक से। निगोरो काराबाग इलाके के कंट्रोल के लिए बार बार झड़पों का शिकार आर्मीनिया और आजरबाईजान के वज़राए खारजा ने वॉशिंगटन में होने वाली बातचीत में तेजी लाने पर इत्तेफाक किया है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने आर्मीनिया के वजीर खारजा अरारत मर्जियोन और आजरबाईजान के वजीर खारजा जेहून बेरामोव से मुलाकात की।
In that the two sides met, they surfaced many of their areas of disagreement. At the end of the day, they were able to agree on a joint statement. They were able to agree to continue meeting and engaging in direct dialogue and diplomacy in the weeks that.
उधर क्राइस्टचर्च में मसाजिद पर हमलों के मुजरिम ने सजा के खिलाफ अपील कर दी है. न्यूजीलैंड के मकामी मीडिया के मुताबिक मुलजिम ने वेलिंगटन की कोर्ट ऑफ अपील में दरख्वास्त दायर की है, जिसे फिलहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया. 29 साल कातिल को अदालत ने न्यूजीलैंड की तारीख में बदतरीन कत्ल आम के जुर्म में इसमें सजा सुनाई थी, जबकि मुजरिम को सुनाई जाने वाली सजा न्यूजीलैंड की तारीख में पहली बार किसी को ताहायात उम्र कैद की सजा थी. उधर भारत के वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत रूस से तेल की खरीदारी का सिलसिला जारी रखेगा, क्योंकि ये उनके मुल्क के मफाद में है और दोनों ममालिक अपने तजारती ताल्लुकात वसी करते रहेंगे. जयशंकर ने यह बात मंगल के रोज अपने रूसी हमबंसब से मुलाकात के बाद कही. इस साल के दौरान दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा की ये 5वीं मीटिंग है, जबकि भारतीय वजीर खारजा इस वक्त रूस के दौरे पर हैं, जो फरवरी में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूस का उनका पहला दौरा है. चीन के बाद भारत रूस से तेल खरीदने वाला दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है, जबकि इसकी रिफाइनरीज तेल की इस कम कीमत तरसील से फायदा उठा रही हैं. दूसरी जानिब अमरीकी वजारत खारजा का कहना है, दुनिया का हर मुल्क रूस से तेल की खरीदारी के लिए आज़ाद है. रूस से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात पर फिलहाल कोई पाबंदी नहीं है. ये बात अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही. उन्होंने कहा कि हर मुल्क रूसी तेल दरामद करने के लिए आज़ाद है, जैसे भारत ने रूस से तेल खरीदा है. और अब कुछ खबरें पाकिस्तान से. वजीर आजम के मुशीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि इमरान खान तसादुम के रास्ते पर चल रहे हैं. कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा कि उन्होंने आज तक जो कुछ भी हासिल किया वो तसादुम के ज़रिए किया, चाहे वो तसादुम अपोजिशन जमातों से हो, इलेक्शन कमीशन से हो, फौज से हो या अदलिया से हो. मकामी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कायरा का कहना था कि इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ना ही उनका ऐसा कोई मुतालबा है. दूसरी जानिब अमरीका ने एक बार फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले की मुजम्मत की है. अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने ब्रीफिंग में कहा कि सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं. तमाम फरीकैन से कहते हैं तशद्दुद, हिरासानी और धमकियों से एहतजाज किया जाए. अमरीका का कहना है कि पाकिस्तान को जमहूरी और पुरअमन देखने का आज़म रखते हैं. हम पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं. गुज़िश्ता चंद रोज़ में पाकिस्तान में जो हुआ उस पर तश्वीश है. उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि मैं एक साल तक इंतखाबात के लिए इंतजार कर सकता हूं, लेकिन मुल्की मईशत इसकी मुतहमल नहीं हो सकती. तुर्क टीवी चैनल TRT के प्रोग्राम न्यूज़ मेकर को दिए अपने इंटरव्यू में साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि वो उन पर किए गए हमले के बाद नफ्सियाती तौर पर पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं. उनका कहना था, मुझे इल्म था चार ताकतवर लोग बंद कमरे में मुझे कत्ल करने का मनसूबा बना रहे हैं. और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज सिडनी में खेला जा रहा है. मैच से कबल दोनों टीमें भरपूर तैयारियां कर रही हैं और दोनों ही टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म हैं. तेज तरीन बॉलर्स की वजह से पाकिस्तानी टीम का पल्ला भारी है, जबकि उनके स्पिनर्स भी किसी से कम नहीं. दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के पास इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, जिनकी बदौलत उन्हें दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 रन्स का हदफ बनाकर उन्हें मुश्किल में डाल दिया था. T20 वर्ल्ड कप्स में अब तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 6 मरतबा मद मुकाबले आए हैं, जिनमें से 4 मैच पाकिस्तान ने जबकि 2 न्यूजीलैंड ने जीते हैं. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का कहना है कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान फेवरेट है या न्यूजीलैंड, ये कहना मुश्किल है. पाकिस्तान की कीवीज के खिलाफ कामयाब या माजी का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि सिडनी में कीवी खिलाड़ी कंडीशन से हमांग है, मैच अच्छा होगा.